الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو پردہ نشین سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک اور حدیث لائے ہیں، حدیث مسلم شریف سے انہوں نے نقل کی ہے، کتاب البر والصلہ. اس میں عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن سخر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے، ان کا نام کیا تھا؟ ابو ہریرہ تو ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام عبد الرحمن تھا، ابو ہریرہ تو ان کی کنیت ہے. ہریرہ ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کو، کیٹی جس کو کہتے ہیں، بلی چھوٹ بلی کا بچہ. ابو ہریرہ کے معنی ہے چھوٹی بلی والے، چھوٹی بلی والے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن رافع نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیسے ہو گئی، آپ کا نام تو عبد الرحمن تھا، انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اسے رات کو درخت کے اوپر رکھ دیتا تھا، جال کے اوپر درخت پر رکھ دیتا تھا، اور دین میں جب اپنے گھر والوں کی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا تو اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، بکریوں کے ساتھ جاتا تھا تو لوگ کٹا لے جاتے تھے اور میں بلی لے جاتا تھا، اور اس بلی کے ساتھ میں کھیلتا رہتا تھا، ادھر بھگاتا ادھر بھگاتا ایسے، اس لیے لوگوں نے میرا نام بلی والا پڑھ دیا، نام ہی میرا رکھ دیا بلی والا. ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام قریباً 40 ہے، 40 ہے، الگ الگ نام لکھے. یہ قبیلے دوس کے رہنے والے تھے، ٹرائب آف دوس، اور ہجرت کی انہوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے جب آئے تو یتیم ہونے کی حالت تھی، اس لیے کہ ان کے والد کا تو بچپن سے انتقال ہو گیا تھا، تو ابو ہریرہ یتیم تھے. خود فرماتے ہیں نشأت یتیما وہاجرت مسکینا، میں نے یتیم ہونے کی حالت میں پرورش پائی اور میں نے مسکین ہونے کی حالت میں ہجرت کی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میں نے ہجرت کی تو یہ میری تنگ دستی اتنی تھی کہ میرے پاس پہننے کے شوز چپل کپڑے بھی نہیں ہوتے. ان کی والدہ کا بھی بہت عجیب مسئلہ جو آپ نے بار بار سنا ہے، والد کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا لیکن فادر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ماں جو ہے ایمان نہیں لائی تھی، باپ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، تو ماں کو دعوت دینے والے بیٹے ہیں، بیٹے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گئی، एक मर्तबा बेटे ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुसलमान हो जाओ, तो बहुत गुस्से हो गई बेटे के ऊपर, बहुत गुस्से हो गई और कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में कह दिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चूंकि वो मुसलमान नहीं थी तो कह दिया। ये बहुत घबरा गए बेटे, बहुत घबरा गए और परेशानी की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदा ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज कह दिए जो आपकी शान में बिल्कुल गुस्ताखी है, मैं क्या करूं? आप मेरी वालिदा के लिए दुआ कर दो ना, आप दुआ कर दीजिए। दुआ के मरकज पर आदमी जाता है, दुआ करे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में कसरत से क्या पढ़ना चाहिए, फरमाया दुरूद शरीफ। बाज लोग कहते इस्तिग़फ़ार, लेकिन हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं तुम्हारा इस्तिग़फ़ार क्या मालूम कबूल हुआ कि नहीं, लेकिन जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो कुरान करीम की आयत से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे।
माशाल्लाह।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार मेरे इस्तिग़फ़ार से बहुत बढ़िया है, बहुत आला है, जिसका कोई अल्फाज नहीं अदा करने। वलो अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम जाऊका वस्तगफरुल्लाह वस्तगफरलहुमुर्रसूल लवजदुल्लाह वस्तगफरलहुमुर्रसूल, रसूल भी तुम्हारे इस्तिग़फ़ार करे, लवजदुल्लाह तुम अल्लाह को उसके बाद तोबा कबूल करने वाला पालोगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मौके मिले हमें तहज्जुद में फजर के बाद सलाम पेश करने के, आराम के साथ, बहुत ही आसानी के साथ। देखो लोग सलाम पेश करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, चलो बात निकली तो बात, बहुत जल्दबाजी करते हैं, धक्का धुक्की ये वो करते हैं, चूंकि उन लोगों को इसलिए कि इंदर इंसान का ना झूला, इंसान बहुत जल्दबाज है, हर चीज जल्दी 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 जल्दी। अब ऐसा जमाना है फास्ट फूड फास्ट लाइफ सब कुछ हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो क्या नमाज की फौरन बात दौड़ेगा तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, कभी नहीं जाना चाहिए नमाज के। फजर की नमाज के बाद आप माशाल्लाह बैठ जाओ, इशराक तक अल्लाह का जिक्र करते रहो, फिर इशराक की नमाज दो रकात पढ़ो और दो रकात पढ़ करके, चूंकि फजर से लेकर एक डेढ़ घंटा, एक घंटा पौन घंटा जो भी, उसमें आप अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, कुछ कुरान की तलावत करेंगे, कुछ इस्तिग़फ़ार करेंगे, कुछ दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो आपका दिल भी मुतवज्जे होगा। जिक्रुल्लाह के बाद तो दिल मुतवज्जे होता ही है, शैतान भागता है जिक्रुल्लाह से। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जाओ तो भीड़ नहीं, एक घंटे के बाद डेढ़ घंटे के बाद जाओगे तो कोई भीड़ नहीं है। वैसे भी हज और उम्रे का सवाब है, दो रकात पढ़कर जाएंगे और वो भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप इशराक की नमाज पढ़ोगे तो कितना बड़ा सवाब है हज और उम्रे का। मकबूलन मकबूलन मकबूला, हदीस में तीन बार है इशराक की नमाज पढ़ने से, मकबूलन मकबूलन मकबूला, तीन बार फरमाया मकबूल 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 हज उम्रे का सवाब, क्या सही हदीस है। पढ़कर निकले आप वहां से आहिस्ता आहिस्ता सलाम पेश करके, आप जब जाते हुए किसी की तरफ तवज्जो न करें, सर नीचा रखकर आहिस्ता 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 दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते, गोया कि आप दरबार रसूल बहुत बड़े इमामुल अंबिया के पास जा रहे हैं आप, वो जैसे जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है, वो जैसे जिंदा थे आज भी जिंदा है, शक ही नहीं। हाँ फरमाया जब तुम दूर से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो फरिश्ते मुझे पहुंचाते हैं, जब करीब आकर पढ़ोगे तो मैं खुद सुनता हूं। अब उससे बढ़कर क्या चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप खुद दुरूद पढ़ रहे, दोषी खुद पढ़ रहे। अल्लाह के नबी जब खुद मस्जिद में एंटर होते थे तो अपने ऊपर दुरूद पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएं और फिर निगाहें नीची इधर उधर नहीं। मैं किसी जज के सामने खड़ा हूं तो मेरी निगाह इधर उधर होती है, नहीं होती है। या इमाम अंबिया के सामने हो तो पर निगाह नीची हो,
जैसे एक नबी का गुलाम है, गुलाम की निगाह नीचे होती है। मैंने ये सीखा एक आदमी से, एक अरब मेरे दोस्त है इस सफर में, चीफ मेरा दोस्त बहुत ही, उसने अपने खादिम को बुलाया, इधर आओ। वो आया, ऐसी निगाह, आंसर भी करता है तो नीचे देखकर। मैंने कहा ये अजीब चीज है, गुलाम ऐसे होते हैं, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे खादिम होते हैं जो उस्ताद के सामने, जो शेख के सामने, जो बड़ों के सामने, जो बेटा बाप के सामने बहुत ताजीम से बात करें, न कि गुस्ताखी करें बाप की या उस्ताद की या शेख की, ये अंदाज है। तो हम तो गुलाम हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो नीची नीची निगाह करके चलना है, और जब सलाम पेश करें तो इधर उधर नहीं, नीची निगाह करके अस्सलातु वस्सलाम अलैक। अगर कबूल ही हो जाए तो सही किस्मत है, वो सुन रहे हैं, सामने सुन रहे हैं, इससे बढ़कर क्या। सलातो सलाम अलैक या रसूल। और पहले जमाने के लोग ऐसे सलात, हमने देखा हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सलातो सलाम अलैक, जैसे वो पहले जमाने में बादशाह के सामने लोग जाते हैं तो आदाब आदाब करते थे ऐसे, आज भी बड़े बूढ़े लोग करते हैं ऐसा करते, बहुत बड़े ताजीम है ये जी। बिल्कुल सलातो सलाम अलैक या रसूल, सलातो सलाम अलैक, अस्सलाम अलैक या सैयदना अबू बकर, सलाम अलैक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जज़ाकुम अल्लाह अन्ना व अन जमीअ अल मुअमिनीन वल मुअमिनात, सिंपल सलाम अब्दुल्लाह इब्न उमर वला सलाम, सुभान अल्लाह। और हम तो चिपक जाते हैं और उसमें अदब भी नहीं होता है, सलाम पेश करें और सलाम पेश करके फौरन कलमा पढ़ लें, तो उसमें हम पूरा अगर वक्त मिल जाए तो लंबा सलाम कर ले, वक्त नहीं मिले तो मुख्तसर कर ले, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। बस अगर वक्त मिले आहिस्ता आहिस्ता चलने का, अगर पीछे आगे लोग हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, सलातो सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, सलातो सलाम अलैक या खैर खल्किल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदर दैत अमाना व बल्लगत रिसाला व नसहत उम्मा। ये वो अल्फाज है जो सहाबा को पूछे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुमको मेरी अल्लाह की अमानत अदा कर दी, मैंने जो दीन लेकर आया तुम्हारे पास क्या वो दीन तुमको मैंने पहुंचा दिया। तो उस वक्त उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कद अदैत अल अमानत, आपने अदा कर दिया अमानत, व बल्लगत रिसालत, आपने रिसालत का हक अदा किया, व नसहत अल उम्मा, आपने उम्मत को नसीहत फरमाई। फिर आगे वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, ए मेरे नबी जब मेरी उम्मत, जब मेरे बंदे तुम्हारे पास आए, वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है यानी गुनाह किए हुए हैं, अब यहां पर आए हैं आपके दरबार में, इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, जब वो तुम्हारे पास आए, ये लफ्ज है ना, वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह, वो अल्लाह से भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, और वो अस्तग़फ़र लहुम रसूल, रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह का नबी भी इस्तिग़फ़ार करता है। अगर अदब के साथ सलाम पेश करेंगे और फिर कलमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे ईमान की गवाही भी कयामत के दिन देंगे, जैसे सहाबा के ईमान की गवाही देंगे, जिस तरह उनका कलमा उन्होंने सुना, हमारा भी सुन रहे हैं, इसलिए कि जब हमारा सलाम सुन रहे हैं तो हमारा कलमा भी सुन रहे हैं, तो हमारे ईमान की गवाही देंगे कयामत के दिन कि ये मोमिन था, इसने मेरे सामने कलमा पढ़ा है। ये चीज है। और अगर वक्त नहीं तो मुख्तसर अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खलास आगे बढ़ के अस्सलामु अलैक या सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन, जज़ाकुमुल्लाहु अन्ना, हमारी तरफ से आपको अल्लाह बेहतरीन बदला दे और पूरी उम्मत की तरफ से। आगे बढ़े अस्सलामु अलैक या सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन, जज़ाकुमुल्लाहु अन्ना, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे हमारी तरफ से भी और पूरी उम्मत की तरफ से। और अगर किसी और का भी सलाम पेश करना है तो उस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह मिन उम्मी व अबी व इखवी, मेरे माँ की तरफ से, मेरे बाप की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, या जिन जिन लोगों ने मुझे सलाम के लिए कहा उन तमाम की तरफ से आपको सलाम हो। कह सकते हैं अरबी में भी, असल तो सलाम ही पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मैंने अक्सर बल्कि अक्सर ही बल्कि पूरे ही का सलाम पेश किया है, खुसूसन हमारी पूरी मस्जिद के जितने भी मुसल्ली जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ पेश किया, और तवाब में भी याद किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम धक्का धुक्की कर दी नहीं, ये उस पर से मुझे बात आई कि बहुत से लोग बेअदबी करते हैं, बेअदबी बहुत ज्यादा है। नबी अकरम देखो अदब में आदमी बहुत तरक्की कर जाता है, बहुत तरक्की कर जाता है आदमी के अंदर में अदब होना चाहिए। यहाँ पर देखो अम्मी को जाकर कह दिया अल्लाह के नबी सास मेरे अम्मी ने बेअदबी की आपकी, गुस्ताखी की है, आप उनके लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। ये नबी अकरम सास ने हाथ उठा लिए, हाथ उठाए भाई हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप खूब दुरूद शरीफ पढ़ोगे वहीं बैठकर तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपके लिए जरूर इस्तिगफार करेगी, आपकी मगफिरत तो वहीं हो जाएगी। हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह जब उमरा के ले गए तो पहले मक्का मुकर्रमा में दिल ही नहीं लग रहा था, तवाफ में दिल नहीं लग रहा, दिल लगना चाहिए ना, दिल नहीं लग रहा, उन्होंने कहा समथिंग रॉन्ग ही है। तो फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और मदीना मुनव्वरा आने के बाद उन्होंने खूब दुरूद पाक पढ़ा, खूब इस्तिगफार किया और वापस गए तो अब रो रहे हैं, अब रो रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिगफार उनके साथ हुआ, खुद का इस्तिगफार, खुद का दुरूद पाक, मोहब्बत रसूल के साथ। अब देखो मजे आ गए। ये कहते हैं हमारे उस्ताद हमारे शेख हजरत हकीम अख्तर साहब कहते हैं आओ मेरी कंपनी में आओ, किसी अल्लाह आने ये कहते रहे अल्लाह वाले के पास बैठो फिर जाओ उमरा के लिए, देखो क्या मजा आता है, देखो क्या मजा आता है तवाफ में, उमरा में, सलातो सलाम में, यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हम जाते जाते वहां बैठते बैठ करके हम जिक्रुल्लाह। बाज लोगों को मजलिस अच्छी लगती है, पता है क्या कहता हूं, बाज लोगों को मजलिस ही अच्छी लगती जब तक कोई साथ में मजलिस वाला ना हो मजे नहीं आते, और बाज लोगों को वहां अकेलापन अच्छा लगता है, मैं और मेरा नबी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रजी अल्लाह तआला फरमाते अच्छी बात, फरमाया मुझे मेरे घर में बैठे रहना अच्छा लगता है। किसी ने कहा हजरत क्या क्या करोगे आप आते नहीं, फरमाया मैं मेरे घर में होता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ता रहता हूँ, गोया मैं अल्लाह के नबी के साथ होता हूँ। अब उससे बढ़कर क्या चीज है, आदमी बैठे बस टाइम नहीं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, एक दो दिन चार दिन पांच छह दिन होते हैं गनीमत के, उसमें भी हम बैठ करके मजलिस से तलाश करते रहते हैं, भाई तू काठी आए वो भाई, तू काठी आए वो, उसके साथ आधे आधे घंटे, तुम किधर से आए भाई, तुम्हारी कंट्री में कैसा है, तुम्हारी कंट्री में कैसा है, तो वो ही अपने टाइम वेस्ट कर दिया, जो टाइम हमारे पास है उसको हमने वेस्ट कर दिया। ठीक वो दीन की बातें हैं, मसला मसाइल है, दावत तबली ठीक है, लेकिन कुछ दुनियावी बात बस ईरान तुरान की बातें हो तो उसमें जिंदगी का टाइम वेस्ट होता रहता है। इसलिए हमें क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम पहुंचे हैं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़कर कसरत से कुरान तिलावत करें, और हमने गुनाह करके जो नाराज किया है अल्लाह को नबी के वास्ते से राजी कर लें कि उनका इस्तिगफार हमें मिल जाएगा ना, तो फिर तो हमारे साथ, फिर देखो सजदे में रोना आता है, फिर रुकू में रोना आता है, और ये जरूरी है। आज देखो दुनिया के अंदर में मैं कहा करता हूं हमारे यंगस्टर्स को देखो नबी की बात, अरे भाई मैं हदीस 1,00,000 हदीस में से इतनी ज्यादा पावरफुल हदीस भी उनको सुनाऊं जो सीरियस हदीस हो, कभी जहन्नम की या कभी कभी रोना नहीं आता, लेकिन फुला टीम में से फुला टीम अगर हार गई तो ये रोएगा, फुला टीम हार गई तो ये रोएगा, लेकिन नबी की बात पर उनको रोना नहीं आता, अल्लाह की बात पर रोना नहीं आता। ये हकीकत है, क्यों, दिल मर चुके हैं, ये दिल मर गए हैं, वल्लाह कह रहा हूं मैं। देखना आज हमारे यंगस्टर के बड़े बूढ़े लोग भी, उनको रोना आएगा मेरी टीम हार गई, रोएगा, वो रोएगी, फुला क्रिकेट में मेरी टीम हार गई रोएगा, लेकिन मेरे नबी और मेरे अल्लाह की बात पर रोना नहीं आता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका दिल दुनिया के लिए है, अल्लाह रसूल के लिए नहीं है। जबकि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूल रातों में दुआ करते थे, अल्लाह रोने वाली आंख नसीब फरमा, आंख नसीब फरमा जो रोने वाली हो। मैं तवाफ में था, आखिरी तवाफ में की बात कर रहा हूं मैं, ये
अलविदा
परसों रात कल, हाँ अलविदा तवाफ ईशा के बाद मैंने 11 बजे शुरू किया। अब यकीन जानिए बात लोगों को अजीब, और मैं अभी तवाफ खत्म करके 2 रकात पर रहा था तवाफ की, मकाम इब्राहिम के पास ऊपर पहले माले पर रहा था, एक ग्रुप आया, ओहो जो उन्होंने रोना शुरू किया, फोट फोट कर रो रहे, आंसू से आंसू निकल रहे। मैंने सलाम फेर कर देखा क्या हो रहा है, जो से लोग रो। अब देखो पूछा मैंने, कहा जिंदगी में पहली बार आना हुआ, पहली बार काबा देखा, वो क्या तरफ होगी उनके अंदर में, 10-12 आदमी थे वह रोए, यंगस्टर्स सारे जवान, एक दो बूढ़े थे ऐसा रोए। वो एक आदमी व्हीलचेयर में था, क्योंकि ऊपर से तो काबा बराबर नजर नहीं आता, वो खड़ा खड़ा भी ऐसे किसी तरह भी कहा मुझे खड़ा करो, मुझे काबा देख रहा, और रोना शुरू किया। अल्लाह, हम अगर अल्लाह के सामने नहीं रोएंगे तो कहां रोएंगे? हम दुनिया के लिए रोते हैं, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं रोते। इसका मतलब हमारे दिल बड़े सख्त है। अल्लाह इसी को कह रहे इस हदीस में जो मैं बयान करना चाहता हूं आज की हदीस। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में और सजदे में बुखारी शरीफ के हदीस है कसरत से पढ़ते थे, सुभानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुभानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिका। रुकू में पढ़ रहे, तहज्जुद में रुकू में पढ़ रहे, तहज्जुद में सजदे में पढ़ रहे, सुभानक अल्लाहुम्म, हमने सिर्फ सुभान रब्बी अलआला, सुभान रब्बी अलआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी कसरत से पढ़ते थे, सुभानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुभानक अल्लाहुम्म। मैं सोच रहा हूं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है, जब से ये आयत उतरी तो अल्लाह ने कहा मेरे नबी को ये दुआ करना। कहां पर है? फसब्बिह بحمد ربك واستغفره انه كان توابا, فسبح سبحان الله بحمد ربك, اپنے رب کی حمد, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره استغفرك واتوب اليك। گویا اس آیت کا پورا ترجمہ ہو گیا, یہ اللہ نے کہا ان کو جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں, میرے نبی آپ کا کام ہے اب اللہ کے سامنے کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ استغفار و توبہ کرنا ہے, رکوع میں سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ ارے بھائی لوگ وظیفے تلاش کر رہے ہیں, استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے, میں نہیں کہتا, قرآن میں اللہ نے کہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, یورسیس کوئی بھی مصیبت آ جائے استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو۔ میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہو 12,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی پڑھے, دیکھو اس کا 3 دن میں کام ہو جاتا ہے۔ استغفار سے ہر مصیبت ٹل جاتی, کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یورسل السماء۔ دیکھو اللہ پہلے, ایک تو اللہ تمہیں معاف کرے گا, یورسل السماء نمبر 2 تم پر بارش نہیں قحط سالی ہے تو بارش بھی اتارے گا, یورسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال خوب مال دے گا, وبنین اگر بچے نہیں تو بچے بھی دے گا, اور شادی نہیں ہوئی تو شادی بھی ہو جائے گی, اس لیے تو بچے کے بغیر شادی کے بغیر تو بچے ہوتے نہیں نا, ہوتے ہیں بھائی, شادی کے بغیر تو بچے نہیں ہوتے, وہ تو شادی کرنی پڑے گی, تو جب بچے رہیں گے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ نے کیا کیا وعدہ کیا ہے قرآن۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک, روتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, ایسا آنسو نکلتے اللہ کے نبی کے داڑھی تر ہو جاتی تھی, سینے پر گرتے تھے ایسے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ پہنچے,
मेरे मम्मी के लिए दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। फरमाया जा मैं दुआ करता हूँ। अल्लाहुम्मा हदी उम्मे अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। नबी की दुआ है, नबी की दुआ है भाई। अल्लाहुम्मा हदी उम्मे अबी हुरैरा, अबू हुरैरा की माँ को दुआ दे दे, हिदायत दे दे। तो वापस लौटते मैं देखता हूँ कि अल्लाह के नबी की दुआ पहले पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूँ। दौड़े मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ के अपने घर पर, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा बंद था अंदर से, अंदर से दरवाजा बंद, पानी डालने की आवाज आ रही थी, गोया गुसल कर रही मेरी अम्मी, छोटे छोटे मकानों से गुसल कर रही है। थोड़ी देर रुके, इंतजार किया और उनकी वालिदा गुसल करने के बाद दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला और फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल। बस क्या कहूं मैं, दुआ तो देखो अल्लाह के नबी की, मैं गवाही देता हूं, देती हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा का खुशी, अल्लाह मेरी मां मुसलमान बन गई, एक जहन्नम से बच गई, जहन्नम से बच गई। वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए गए, वापस गए और मैं अपनी वालिदा की ईमान की खुशखबरी सुनाई, मेरी मां मुसलमान हो गई। अल्लाह सुनाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, हे अल्लाह के रसूल अब मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए और मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अपने हर मोमिन बंदे के दिल में मेरी मां की और मेरी मोहब्बत डाल दे, हर बंदे के दिल में और हमारे दिल में, हमारे दिल में सब मोमिन की मोहब्बत डाल दे। यह असल चीज, रात को सो ना अपने दिल से कहो मेरे दिल में किसी के बारे में नफरत नहीं, बस मेरा दिल सबसे खाली है, जिन्होंने सताया है, जिन्होंने जो किया है करने दो, लेकिन मेरा दिल सबके बारे में खाली, मेरी तरफ सबको माफ है, मेरी तरफ से माफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ कर, अबू हुरैरा के लिए दुआ और उनकी मां के लिए दुआ कबूल हो गई। ये भी अबू हुरैरा कहा करते थे नबी के दुआ के बाद, इस दुनिया में जितने भी ईमान वाले बंदे हैं जिनको मेरे मुतालिक खबर पहुंचेगी वो ईमान वाला मुझसे और मेरी वालिदा से मोहब्बत करेगा। आज अबू हुरैरा का नाम हर आदमी के जबान पर है, हर मुहद्दिस की जबान, हर मुफस्सिर अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, चूंकि उनकी हदीस ज्यादा है, सबसे ज्यादा उनको हदीस याद थी। लोग पूछते थे क्यों, तो ये वाकया सुनाते थे पूरा कि मेरी मां के लिए दुआ की, फिर मैंने अल्लाह के नबी को कहा मेरे लिए और मेरी मां के लिए कि दुआ कर दीजिए कि लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत हो और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में हो। तो ये सब चीज है। आज के सबक में मुझे खास तौर पर आपके सामने ये बतलाना है, देखो हजरत अबू हुरैरा तआला अन्हु का दिमाग कमजोर था, याद करते थे भूल जाते थे, याद करते थे भूल जाते थे, लेकिन जाकर शिकायत की, देखो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूल जाता हूं, याद करता हूं भूल जाता हूं, ये चीज है सब। सो कहा लाओ तेरा कपड़ा फैला दे, चादर जो है चादर मेरे सामने रख दे, चादर फैला दे यहां तक कि मैं अपनी बात पूरी कर लू, मैं जब बात करूं पूरी कर लू, वो कपड़ा अपने सीने से लगा लेना, कपड़ा अलग से, ये कपड़ा है ना ऐसे लगा लेना बस अपने सीने से, सीने से लगाओ। अल्लाह अकबर, तू मेरी कोई बात कभी नहीं भूलेगा, तू मेरी कोई बात कभी नहीं भूलेगा। हाय हाय, मैंने चादर को फैला दी और फिर मैंने उसको सीने से लगा ली, अल्लाह की कसम आज तक आपकी कोई बात भूला नहीं। ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है, कभी नहीं भूला। इतना गजब का हाफिजा अल्लाह ने उनको दिया था। याद रखो हमारे बच्चे भी आजकल दिमागी एतबार से कमजोर होते हैं, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर उसको चुपचाप कराना चाहिए दम। और सबसे अच्छी हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है, वो क्या है कि पूरी पर जाओ इकरा अपने सब्बह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी कद्दर फहदा वल्लज़ी यख़रजल मरआ फजअलहु गुथाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। इस आयत को सिर्फ इतनी आयत, सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउक हम आपको याद कराएंगे तुम भूलोगे नहीं, सनुक़रिउक फला तंसा सात बार पढ़ लो, फिर इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु पूरी सूरत पूरी कर लो। तो पूरी सूरत एक बार, बीच में छोटी आयत है सनुक़रिउक फला तंसा, और उसको सात बार पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर दो, खुद भी कर लो अपने ऊपर, अपना हाफिजा भी ठीक हो जाएगा। यह हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बताया, मुंह पर याद नहीं, कुरान में खोल कर सूरत याद कर ले। 30वां सिपारा है, 30th पारे में सब बेज में तो हर जुमा को हम पढ़ते हैं, लोग अक्सर पढ़ते हैं, उसमें एक आयत है सनुक़रिउका फला तंसा, पूरी सूरत एक बार पढ़ लो, पूरी सूरत एक बार, लेकिन उसमें जो आयत है ना सनुक़रिउका फला तंसा, तीन बार पांच बार सात बार पढ़ के दम करके फिर आगे पूरी सूरत पढ़ लो, या फिर उस आयत को तीन बार रिपीट कर लो, या चार पांच बार या सात बार, फिर पूरी सूरत पूरी करके फिर अपने ऊपर दम कर लो, अपने हाथ के ऊपर या इस तरह हाथ रख करके सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका फला तंसा, सनुक़रिउका फला तंसा, फिर इल्ला माशाल्लाह से पूरी कर लो। ये बहुत जबरदस्त अमल है। तो ये चीज थी, हाफिजा बहुत मजबूत हो गया। हजरत अबू हुरैरा ने सीने पर चादर लगा ली, और देखना क्या सारे सहाबा में आपकी हदीस सबसे ज्यादा थी। फरमाते हैं इस हदीस के रावी है वो अबू हुरैरा जी अल्लाह ताला नकल फरमाते, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जिस्म, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता कितना मोटा है कितना पतला है, वो नहीं देखता, और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, याद रखो तुम्हारी शक्ल को नहीं देखता। हाँ ये याद रखो, हम लोग शक्लों को देखते हैं, शक्लों को नहीं दिलों को देखा करो, शक्ल को नहीं देखो दिल को देखो, इस आदमी का दिल कितना नूरानी है वो देखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है, दो चीज है आमाल और इखलास, आमाल और इखलास। तो इंसान के साथ ताल्लुक रखने वाली चीज की दो किस्म है, पहली किस्म वो चीज है जिनका वजूद वजूद बिल्कुल जाहिर है, जो अल्लाह की हर मखलूक को नजर आता है, जैसे मैं आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इंसान का बदन है ये जाहिरी चीज है, ये हर एक को नजर आता है। इसी तरह हमारी जिंदगी की जरूरियात जो हम सबको नजर आती है, मेरा मकान है भाई, गाड़ी है, ये सब देखते हैं, तो ये गाड़ी है भाई, ये मकान है इनका, ये फुला सबको नजर आता है। तो ये सब जाहिरी चीज है जो हमें नजर आती है, ये मस्जिद है, ये मकान, ये मदरसा है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला, ये सब जाहिरी चीज है जो इंसान को नजर आती है, उसको इंसान अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करता है, वो चाहता है कि उसका जिस्म अच्छा रहे। लिहाजा सेहत के लिए जितनी भी चीजें मुफीद हैं सेहत के लिए वो उनका इस्तेमाल करता है, जिस्म बनाने के लिए, अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, कभी ये लगा लिया कभी वो लगा लिया कभी वो क्या और क्या, टिप और टॉप और क्या क्या मिलता है। आज इंसान है वो अपने जिस्म को अच्छा बनाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या गोली खाते हैं, कभी जिम में जाते हैं, कभी हा में जाते हैं, कभी जिम में जाते हैं, ये चीज है। तो जितनी भी चीजें मुफीद हो सकती इंसान खा लेता है और माशाल्लाह बॉडी बॉडी बिल्डर बन जाता है। अब तो औरतें भी फिर बॉडी बिल्डर बन रही है, देखा ऐसे ऐसे बस बॉडी बिल्डर। हाँ भाई डॉक्टर ने कहा है चलने का है 50 किलोमीटर, चलो। सबसे बड़ी चीज चलने की नमाज है, नमाज तो पढ़ते नहीं चलते रहते हैं। सारी चीजों का इस्तेमाल करो, अपनी सवारी को आदमी खूबसूरत बनाता है, अपने घर को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि ये जाहिरी चीज है नजदीकती है। अगर घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो फौरन घर की सफाई सुथराई, जब शादी ब्याह का मौका आता है तो घर को रंग रोगन कर लेती है, सारी जाहिरी चीजों को नजर आती है। इंसान की तबीयत में है कि वो जाहिर को बनाने की पूरी कोशिश करता है, टिप और टॉप में बड़ी कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जाहिरी चीज को नहीं देखता। अल्लाह को ये नहीं, तुम करते रहो लेकिन मैं उसको नहीं देखता। कुरान करीम में जब अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया है, मुनाफिकों का, तो वइदा रअयतहुम तुजिबुक अजसामहुम, अल्लाह क्या कहता है, जब आप मुनाफिकों को देखोगे तो आपको उनके जिस्म भर जाएंगे, बड़े खूबसूरत बड़े मोटे, और जब आप उसको देखोगे तो उसका जिस्म तुम्हें अच्छा लगेगा। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने कहा है वइदा रअयतहुम, इतने तगड़े इतने मोटे इतने ताजे उनके जिस्म है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मुनाफिकों के बारे में कुरान नकल करता है कि उन्होंने जिस्म बनाए हैं खा खा के, और जरा कसरत करके, और कभी क्या कहते हैं जिम में जाकर के अपने वजन को बराबर बना दिए हैं, जो जाहिर में दिखते हैं तुमको वो जिस्म अच्छे लगेंगे अच्छे लगेंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जिस्म का कोई एतबार, ला यंजुरु इला अजसामिकुम, मोटा बनाने वाला भी अल्लाह है, दुबला बनाने वाला भी अल्लाह, ताकतवर भी, कमजोर इंसान भी, काला भी, गोरा भी, सुर्ख भी, जर्द रंग का, सब तरह तरह के इंसान दुनिया में है यार देखो। लेकिन अल्लाह के यहां उस रंग का कोई एतबार नहीं है, शक्ल सूरत का कोई एतबार नहीं है। जिस तरह चाहता है वो शक्ल दे देता है, न किसी काले को गोरे पर फजीलत है, न गोरे को काले पर, न किसी जी एशियन को अरब पर, न अरब को एशियन पर, किसी पर। ये बात अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार बयान फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया। ये तो एक जाहिर, दूसरी किस्म है वो जिसका वजूद बातिन में है, जो इस हदीस में बयान कर रहे हैं, जो मखलूक को नजर नहीं आती, उनमें से एक दिल है, उस दिल को बनाने वाले भी अल्लाह है, उसको बनाना है, उसको बनाना है। और कुरान में क्या है, यौम ला यन्फउ माल वला बनून, कयामत के दिन तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा नहीं देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, अल्लाह के यहाँ जो कल्ब सलीम लेकर तुम आओगे ना वही तुम्हें फायदा देगा। सलीम के माने वो दिल जिस पर मेहनत की हो तुमने। दिल पर कौन मेहनत करता है यार, जाहिर पर तो सारे मेहनत करते हैं लेकिन दिल पर मेहनत कौन करता है? इसलिए कि दिल की इसलाह पूरे जिस्म की इसलाह है, दिल का बिगाड़ पूरे जिस्म का बिगाड़ है। हाँ याद रखो, इसीलिए बुखारी शरीफ में रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के साथ ऐसे बैठे हुए थे, एक आदमी का वहां से गुजर हुआ, ऐसे जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने सहाबा से, ये कौन है जा रहा है, कौन है? सहाबी ने कहा, रजुलुन मिन अशराफिल नास, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ी आदमी है, तो यानी बहुत पहुंची हुई हस्ती है, रजुलुन मिन अशराफिल नास, हदा वल्लाही, क्या कह रहे, इन खतब यनकह व इन शफा यशफा, अगर वो किसी को निकाह का पैगाम भेजे ना कोई रिफ्यूज नहीं करेगा, बहुत पैसे वाला, बहुत बड़ा आदमी है, और अगर ये किसी की सिफारिश कर दे तो उसकी सिफारिश कबूल करे, बहुत मोटा आदमी, इसकी तो सिफारिश बड़ा एमपी है, ये तो इसकी बात ही चलती है और किसी की नहीं चलती है, ये इसकी बात ही चलती, इसका कागज लेकर जाओ काम बन जाएगा तुम्हारा। अब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, यानी बड़ा आदमी है ये कौम के अंदर में। तो अल्लाह अकबर, ये बुखारी शरीफ की रिवायत, सही रिवायत है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे पूछा, यानी थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी गया, दुबला पतला था, वैसे पुराने कपड़े में था, फरमाया ये कौन है? हाज़ा रजुलुन मिन फुकरा अल-मुस्लिमीन, ये फकीर है, ये तो वैसे पैदल ऐसे ही है, फुकरा जिसकी तरफ लोग ध्यान देते नहीं है, निचली किस्म का है, लोअर टाइप के थे। फरमाया इन खतब अल्लाह इनके, अगर वो निकाह का पैगाम है लोग उसका टुकड़ा कहेंगे, जा यहां से यार मेरे घर पर आ गया, वहीं शफा ला यशफा, और अगर सिफारिश करे तो भी कबूल नहीं। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं मैं, आदमी को देखकर बात नहीं करनी चाहिए, उसकी जाहिरी सूरत ना देखो, उसका दिल देखा करो कि वो अल्लाह से कितना करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाजा खैरुन, ये दूसरे नंबर पर जिसका तुम फकीर कह रहा हो ना, हाजा खैरुन मिन
मलेइल अर्द मिथ्ल हाजा, वो पहला आदमी बहुत पहुंचेली हस्ती थी ना, इस जैसे आदमी से पूरी दुनिया भर जाए। वो मोटा आदमी जो अच्छा मालदार था ना, उससे पूरी दुनिया भर जाए, इतने ऐसे लोग हो, ये एक आदमी उन सब में बढ़िया है, ये फकीर आदमी सब सब है ही। देखा इस साहबी ने दोनों आदमियों के बारे में जो फैसला किया था वो जाहिरी हालत को देखकर फैसला किया था। वो साहबी जो बैठे हुए थे ना, जिनको पूछा कि ये कौन है ये कौन, उन्होंने जाहिरी हालत को देखकर फैसला किया। कभी भी नहीं फैसला करना चाहिए, किसी की जाहिर को देखकर किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कितनी पहुंची हुई हस्ती अल्लाह के यहां, हमें पता नहीं है। हाँ, किसी मालदार को देखकर मुंह में राल चपकाना नहीं चाहिए, और किसी गरीब को देखकर हकीर नहीं समझना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो। पहले वाला तो कपड़े में माशाल्लाह, हट्टा कट्टा जाहिरी बदन माशाल्लाह, दूसरा आदमी कमजोर था। एक हदीस पे नबी अकरम अकरीस है, नबी अकरम साहब इशारा फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक आदमी चल रहा था, ऐसे चल रहा था। यह हदीस भी बुखारी शरीफ की है, सही हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, रवान बुखारी है, और इसको किताब उल लिबास में इमाम बुखारी ने बयान किया है। बनी इसराइल का एक आदमी चल रहा था, और बहुत अच्छा कपड़ा, आलीशान जूते और सब पहनकर जा रहा, और उसके बड़े बड़े बाल थे, बाल भी, और माशाल्लाह कंघी करके बहुत खूबसूरत नजर आता था जी, लेकिन फखर बहुत था उसमें, मटक मटक कर चलता था, मटक मटक कर चलता रहा हमारा उस तरह, फखर तकबुर के साथ चल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं आया, ये बात पसंद नहीं अल्लाह को, क्योंकि दिल की हालत खराब थी उसकी, अंदर में खाली ऊपर से बड़ा हुआ था जी, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर से काली बला, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह और अंदर से काली बला, ऐसे लोग। इमाम अल्लामा इकबाल ने लिखा है, शब भर में बना दी मस्जिद ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मस्जिद बना दी शब भर में, एक रात में शब भर में मस्जिद बना दी ईमान की हरारत वालों ने, आज बना देंगे ये साहब वैसा वैसा, लेकिन मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, उजब था। तो जाहिरी जिस्म की हालत अच्छी थी, जोड़ा कपड़ा अच्छा था, बाल खूबसूरत थे, उस पर अल्लाह ने उसको सख्त सजा दी कि जमीन को हुक्म दिया फट जा, उसके तकब्बुर का चल रहा था, फट जा और उसको धसाया। अब ये कहते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत तक जमीन में धसता रहेगा। अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। हां, इसलिए दिन की दिल के बनाने के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर में नहीं, जाहिरी चीज अल्लाह नहीं देखता, दिल की मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर दिल ठीक है इस तो सब कुछ ठीक है, और अगर दिल खराब है, वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला, तुम्हारे अमवाल तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के यहां करीब करने वाली चीजें नहीं है, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह से करीब करने वाला नहीं है। इल्ला मन आमन, कुरान क्या सुना रहा हूं मैं, इल्ला मन आमन वामिल सालिहा, हाँ जो ईमान वाला है, जिनके आमाल अच्छे हैं, दिल का अमल हो, ईमान ये दिल का अमल है, और अमल सालिहा जाहिर अमल है, यानी तुम्हारा अमल और तुम्हारा दिल दोनों बराबर हो, अमाल हो इखलास के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर मदद आती है, वरना अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती। इसी को फरमाया इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वलाकि यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है, जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला من آمن وعمل صالحا, جو دل والا اخلاص والا عمل کرے تو اللہ کا محبوب ہے, ورنہ اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ اور اخلاص نصیب فرمائے. اللہم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك, رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا, يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا, يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا غفار الذنوب وستار العيوب اغفر لنا, يا غفار الذنوب وستار العيوب اغفر لنا, يا غفار الذنوب وستار العيوب اغفر لنا, يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما, نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما, اخلاص والے اعمال نصیب فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, تکبر سے غرور سے گھمن سے فخر سے ہماری حفاظت فرما, حسد سے بغض سے کینہ سے کپٹ سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ظلم سے ہماری حفاظت فرما, برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما, برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما, برے طعام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو حدیث کو سننا قبول فرما, یا اللہ دور دور سے آنے والوں کو بیٹھنا قبول فرما. اللہ ہمارا آنا اور بیٹھنا اللہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں قبر میں نجات کا ذریعہ بنا. اللہ ہماری مائیں اور بہنیں مدرسے میں بہت دور دور سے آتی ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے. اے اللہ جتنا تو اپنا تجھے اپنا نبی محبوب تھا, اتنی ہی ان کی باتیں تمہاری باتیں اللہ تمہیں محبوب ہے. اے اللہ آنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی محبوب بنا دے, آنے والے کو سننے والوں کو بیٹھنے والے کو محبوب بنا دے, اپنے نیک بندوں والوں نیک بندوں میں سے بنا دے. یا اللہ جو بات کہی جاتی ہے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما, جو گھر میں پریشان ہے اپنے ماں باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ, اے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت مبدت نصیب فرما, یا اللہ سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما, اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ عمر دراز نیک صالح اعمال کے ساتھ نصیب فرما, عمر دراز نیک صالح اعمال کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ جب ہمارا وقت آئے جو تو نے لکھا ہے اس پر, اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما, استقامت والی موت نصیب فرما, ایمان والی موت نصیب فرما, تیری رضا والی موت نصیب کرنا. یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کر لینا, قبر کے سوال جواب دینا آسان کر دینا, اور وہاں کے عذاب سے ہماری حفاظت کرنا, قیامت کی گھبرا رات سے ہماری حفاظت کر لینا. یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا, عرش کی سایہ میں جگہ دے دینا. یا اللہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا. یا اللہ میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, جو اعمال کیے اس کو قبول فرما, اور بار بار ہمیں لے جا, بار بار ہمیں لے جا, بار بار ہمیں لے جا, اور اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما, جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہو, آخری اشرا ہو, جمعہ کی رات ہو, لیلۃ القدر ہو, سجدے میں سر ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, اور تو موت دے ایسی موت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے, اپنے نبی کے صدقین آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.